हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो वृंदावन में एक और सुंदर मंदिर है जो गौड़ीय संप्रदाय में नहीं है लेकिन निम्बार के संप्रदाय में है। एक ललिता जी के अवतार हुए हैं, वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु जब दुनिया में थे उसी समय वहां पर उपस्थित थे। तो चैतन्य महाप्रभु इस विश्व में थे तो उस समय वल्लभाचार्य भी उपस्थित थे जो पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं, वल्लभ भट्ट। चैतन्य महाप्रभु ने जब लीला किया नवद्वीप में तो रुद्रद्वीप में ये वल्लभ भट्ट प्रकट हुए थे, उनको शंकर भगवान ने दर्शन दिया था। लोहित शिव नाम के शंकर भगवान ने वहां दर्शन दिया और उनको आदेश दिया कि आप अपना संप्रदाय बनाइए और आप वल्लभाचार्य के रूप में प्रकट हो जाएंगे। इस तरह से वल्लभ भट्ट वहां पर आए थे, उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त करके आगे संप्रदाय बनाया जो पुष्टि मार्ग के संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध है और उसको शिव संप्रदाय रुद्र संप्रदाय कहते हैं। तो वो भी उपस्थित थे, ललिता जी के अवतार स्वामी हरिदास भी उपस्थित थे उस समय विश्व में, और ये निम्बार्क संप्रदाय में थे। उसकी कथा भी ऐसे कि चार कुमार जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, शिव जी से भी बड़े हैं वो, शिव जी उनके बाद में प्रकट हुए हैं। तो वो चार कुमार जो है वो वन में तपस्या कर रहे थे, वहां पर ये निम्बार्क आचार्य वहां पहुंच जाते हैं निम्बादित्य, और उनसे सनत कुमार संहिता प्राप्त करते हैं और उनके आदेश से ये संहिता लेकर आगे प्रचार करते हैं तो निम्बार्क संप्रदाय तैयार होता है। तो इस निम्बार्क संप्रदाय में ललिता जी के अवतार हुए हैं स्वामी हरिदास, और वो बड़े संगीतज्ञ थे। आज भी भारतवर्ष में स्वामी हरिदास के नाम से बड़ी बड़ी संगीत प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। संगीत का तो उनका महात्म्य है लेकिन वो बहुत बड़े भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो ये स्वामी हरिदास जी निधि वन नाम के वन में भजन करते थे और उनकी कुटिया ऐसी थी कि केवल आप सांप की तरह पेट के बल ही वहां अंदर प्रवेश कर सकते हैं, बैठ के भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, दंडवत के रूप में आपको आगे आगे जाना है, ऐसी उनका प्रवेश द्वार था। उसके अंदर कुटी में वो बैठ के भजन करते थे। और तानसेन जो है ना, अकबर के दरबार के नव रत्नों में से एक रत्न, जो गायक इतने श्रेष्ठ गायक थे कि सूखे अकाल के समय मेघ मल्लार गाकर उन्होंने वर्षा प्रकट किया, ऐसे बहुत पावरफुल संगीतज्ञ थे वो गायक। और वो ये महान संगीतज्ञ स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तो उनकी महती जो है वो हमेशा अकबर के दरबार में गाया करते थे कि मेरे गुरु इतने महान संगीतज्ञ हैं। तो अकबर बहुत व्याकुल थे उनको मिलने के लिए। तो बड़ी इच्छा से एक दिन अकबर उसके साथ चलते हैं कि मुझे वृंदावन चल के दर्शन करना है आपके महाराज के। तो अकबर को लेके आते वो तो पहले खुद जाते हैं दंडवत के रूप में अंदर प्रवेश करते हैं, कहते कि हमारे महाराज जी आए हैं, उनको आपको मिलना चाहते हैं। तो महाराज जी बोलते हैं मुझे उनको नहीं मिलना है, I don't want to meet him. मैं किसी ऐसे दुनियादारी के राजा को नहीं मिलना चाहता। कभी संकट समस्या होगी ना, अभी एक तरह से जिसमें जहाँ काम करते हैं वहाँ के राजा खड़े हैं, एक तरह से जीवन के मालिक गुरु जी खड़े हैं, और उनको लेकर आए हैं और ये मिलना नहीं चाहते। अभी कह रहे क्या बीच में, तो बाहर आते हैं बोलते हैं महाराज आपको मिलना नहीं चाहते तो राजा भी बहुत जिद्दी है, वो कहते हैं हमें मिलकर रहूंगा, क्या करना है बताइए। बोले ये झोपड़ी में आपको घुसना पड़ेगा इस तरह से। तो फिर अंदर जाते हैं, उनको विनती करते हैं, वो आने को तैयार है, आप उनको दर्शन दीजिए कृपा करके। तो फिर राजा जो है अकबर अंदर चले जाते हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो कहते हैं कि महाराज गुरु जी को बताते हैं कि मुझे कुछ सेवा दीजिए आप, मैं सेवा करना चाहता हूँ आपकी। तो कहते हैं कोई सेवा की जरूरत नहीं आपकी आप समझ सकते हैं इस बात को। हाँ, चक्रवर्ती सम्राट अकबर जो है ना, वो इतना धनी राजा है, उसको वो कह रहे हैं कि आपकी सेवा की कोई जरूरत नहीं है। राजा भी अपनी जिद पे अड़ता है, नहीं नहीं मैं राजा हूँ, आपको कुछ सेवा करना चाहता हूँ। बोले आप नहीं सेवा कर सकते, आप छोड़ो उस बात, फिर भी जिद करते हैं। तो राजा की जिद देकर वो फिर वो खुद तीनों लोग गुफा से बाहर आते हैं, मतलब वो कुटी से, और उनको वो यमुना किनारे केशीघाट लेके जाते हैं। आपने केशीघाट दर्शन किया किसने? केशीघाट ऐसा स्थान है जहां पर भगवान ने केशी का वध किया था, और कहते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदी का संगम त्रिवेणी में है और बहुत पवित्र नदियां विश्व में हैं, गंगा से भी अधिक प्रभावशाली केशी घाट है जमुना किनारा, जहां पर भगवान ने केशी का वध किया, ऐसा उसका प्रमाण है। और आज भी श्राद्ध कर्म करने के लिए केशी घाट सब सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जहां पर श्राद्ध करने से, अस्थि अर्पण करने से परम गति प्राप्त होती है, ऐसा केशी घाट का किनारा है। और रघु गोस्वामी कहते हैं जिनको इस दुनिया में भौतिक लालसा है वो कृपा करके केशी घाट मत जाइए, क्योंकि वहां पर त्रिभंग रूप में हाथ में मुरली धारण करके श्याम सुंदर खड़े हैं और मुरली बजा रहे हैं, उनका रूप इतना मनमोहक है कि आप जाते ही आपका सारी इच्छाएं छीन लेंगे, वो आपको इच्छा विरहित कर देंगे। तो अगर आपको सीरियसली कुछ इच्छा में इंटरेस्ट है वहां मत जाना, क्योंकि वैसे ही वो आपको हरण कर लेंगे सब, ऐसे रूप गोस्वामी श्लोक लिखते हैं भक्ति सामर सिंधु में। तो वो केशी घाट पे बहुत सीढ़ियां बनी हुई है, भरतपुर के राजा का आज महल भी वहां पर, उसमें ना वो राजमहल में ऐसा एक भुयार था, क्या कहते हैं उसको, टनल था, टनल जिसमें घुड़सवार जो है भरतपुर से आते थे अंडरग्राउंड। भरतपुर और वृंदावन आज भी 50 किलोमीटर का अंतर है, और वो केशी घाट के महल से अंडरग्राउंड ऐसा एक टनल था जो सीधा भरतपुर खुलता था, और घुड़सवार लोग उसमें सवारी करते थे, ऐसा अद्भुत जगह है वो। तो वो जो सीढ़ियां थी उसमें एक सीढ़ी का एक कोना टूटा हुआ था, तो स्वामी हरिदास अकबर को कहते हैं उसको रिपेयर करो आप। राजा को लगा, अरे मैं तो राजा हूं, एक सीढ़ी टुकड़ा आप बता रहे हो, मैं ऐसे कई घाट बना सकता हूं, नहीं ये भी रिपेयर करूंगा और भी चार घाट बना दूंगा। अच्छा, तो स्वामी हरिदास अकबर को दिव्य दृष्टि देते हैं, उनके सर पे हाथ रखते हैं, तो उनके आंखों के सामने दिव्य वृंदावन प्रकट हो जाता है, मणिकंचन से बना हुआ, चमकता हुआ, हर एक सीढ़ी के हर एक अणु जो है वो चमकदार रत्नों से बना हुआ है, दिव्य वृंदावन धाम प्रकट हो जाता है। और फिर वो दिव्य वृंदावन में वो टूटा हुआ एक कोना नजर आता है उनको, और फिर वो स्वामी जी के चरणों में गिर जाते हैं, वो कोना मैं रिपेयर नहीं कर सकता, मेरे पूरे धन के साथ भी लगाकर भी मैं वो कोना जो है वो रिपेयर नहीं कर सकता। तो उसको नम्रता हुई, मतलब समझ में आया कि मैं तो अपने धन के गर्व में था और एक साक्षात्कारी जीव से अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहा हूं, तो नम्र हो गया वो। ऐसे कथा आती है, वो सच कितनी है वो आपको ही ढूंढना है, लेकिन इस कथा का सार आप जरूर समझ सकते हैं। हम सब लोग भगवान के पास जाते हैं और सोचते हैं मैं धनी हूं, मैंने अभी 5 करोड़ दिया, मैंने अभी 10 करोड़ दिया, 5 लाख दिया, 5,000 दिया, बड़ा गर्व करते हैं, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य के सामने हम क्या दान दे सकते हैं उनको। एक बच्चा अपने पिताजी को क्या दे सकता है, 5 रुपए का चॉकलेट दे सकता है, उन्हीं के द्वारा दिया हुआ पैसा सेव करके उनको एक चॉकलेट दे सकता है, हैप्पी बर्थडे कह सकता है, लेकिन वो 5 रुपए का चॉकलेट भगवान को प्रभावित नहीं करता है या पापा को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन फिर भी पापा उसको स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 5 रुपए के खुद के ही पैसे को सेव करके जो चॉकलेट लाया हुआ है उसके पीछे जो प्रेम है उसका, वो स्वीकार करते हैं भगवान। तो अकबर की इस कहानी सच है झूठ है भूल जाओ उसको, लेकिन ये जरूर समझना चाहिए हमको कि हम भगवान के सामने अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन गर्व से नहीं कर सकते, क्योंकि तो सारा जो ऐश्वर्य हम समझते हैं हमारा है वो सब उन्हीं का दिया हुआ है। ऐसे स्वामी हरिदास जैसे महान आत्मा ब्रज में भजन किया करते थे निधि वन में, तो एक दिन वो जब ध्यान में भजन में मग्न थे तो उनके सामने बांके बिहारी प्रकट हो गए, निधि वन में अपने आप स्वतः प्रकट हो गए बांके बिहारी जी। तो ये बांके बिहारी का विग्रह बज्रनाभ ने नहीं बनाया था, वो निधि वन में हरिदास स्वामी के प्रभाव से प्रकट हो गए, तो वहीं पर उनको भजन करते थे वो निधि वन में। यथावकाश चले गए, वो अंतर्धान हो गए, तो वो उनका पूजन चलता रहा वहां पर। तो बांके बिहारी मंदिर की कथा ऐसी है कि बांके बिहारी का मंदिर निधि वन के बड़े घने जंगल के अंदर था, और एक समय का राजा था, एक बुढ़ा आदमी था, वो थोड़ी संक्षेप में बताता हूं कहानी आपको। एक बुढ़े आदमी को ऐसा साक्षात्कार हुआ कि अभी जीवन में बहुत कम समय बाकी है और मुझे तुरंत सबसे ऊंचे व्यक्ति की सेवा करनी है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की। तो उसके गांव में सरपंच उससे बड़ा व्यक्ति था, तो उसकी सेवा में लग गया। वो एक दिन सरपंच के सामने एक मंत्री आया, तो सरपंच मंत्री की सेवा करते दिखाई पड़ा, तो सरपंच की सेवा छोड़ दिया और मंत्री की सेवा में लग गया। बहुत दिन मंत्री की सेवा किया, तो बाद में एक दिन मुख्यमंत्री आया, तो मंत्री मुख्यमंत्री की सेवा में चला गया, तो इसने मंत्री की सेवा छोड़ के मुख्यमंत्री की सेवा में चला गया। और बहुत दिन तक मुख्यमंत्री की सेवा किया। एक दिन प्रधानमंत्री आया तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सेवा में गए, तो इन्होंने मुख्यमंत्री को छोड़ के प्रधानमंत्री की सेवा में गए। तो बहुत दिन तक प्रधानमंत्री का सेवा किया और एक दिन मालूम पड़ा कि इसके ऊपर एक राजा भी है जिसकी वो सेवा करता है। तो अभी सब कुछ छोड़ के राजा की सेवा में लग गया। तो राजा दिन भर अपना राज्य कारोबार करता था, तो दिन भर उनकी सेवा करते थे। एक दिन रात को थोड़ा सा देर तक जागे तो क्या देखा कि राजा राज वस्त्र उतार कर, सूती धोती पहनकर, एक अंग वस्त्र पहनकर, रात के समय मुकुट उतार कर, नंगे पैर जंगल में जा रहा है। तो उसके पीछे पीछे जाते हैं सेवा भाव से। वो अंदर जाते हैं जा पीछे पीछे पीछे, तो राजा निधिवन में प्रवेश करके बांके बिहारी की सेवा करने जा रहे हैं। रात भर बांके बिहारी का पूजन सेवन अर्चन कर रहा है। तो तुरंत राजा की सेवा छोड़ के बांके बिहारी की सेवा में आ जाते हैं। अभी जब ये स्थिति होती है ना, राजा का दिन रात भर वो अवलोकन करते हैं राजा क्या कर रहे हैं। और राजा जब जाते हैं, भले ही सुबह के पहले ही निकल जाते हैं, गुप्त रूप में सेवा कर रहे, तो सुबह होने के पहले ही भोर के समय निकल जाते हैं, तो ये उसी समय वहां पर खड़े हो जाते हैं। जब राजा निकल जाते हैं तो मंदिर के दरवाजे पे निकल खड़े हो जाते हैं और वहां खड़े रहते हैं। कुछ समय बाद पुजारी आते हैं, फिर सेवा शुरू होती है, फिर रात होती है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे सेवा चाहिए। अभी क्या कहे उसको, बूढ़ा आदमी बहुत डेस्परेट है, एकदम व्याकुल है, तो अब भी कभी सेवा चाहिए। तो ये कहते हैं ठीक है, यहाँ खड़े हो जाओ और गेट कीपर बन के रहो, और इस दरवाजे से अंदर और बाहर को जाना नहीं चाहिए। अभी देखिए वो दरवाजे को लॉक करके जा रहे हैं, तो उनको कहने की जरूरत क्या है कि इस दरवाजे से अंदर बाहर को जाना नहीं चाहिए, तो लॉक किया तो कैसे जाएगा। लेकिन अभी ये बुढ़ा व्यक्ति इतना व्याकुल है, को अभी के भी सेवा चाहिए, तो उसको सेवा के लिए एंगेज करने के लिए दे देते, भाई खड़े रहो यहाँ पर, कोई जाना नहीं चाहिए यहाँ से बाहर। तो खड़े हो जाते, और ठंड का समय है, रात को भगवान का शयन कर दिया है, पुजारी लोग चले गए हैं, अभी बाहर खड़े हैं द्वारपाल के रूप में। उतने में जैसे ही पुजारी जाते हैं, कुछ ही देर के बाद स्वयं बांके बिहारी बंद दरवाजे से बाहर आते हैं, ताला लगाए हुए दरवाजे से। तो ये उसको रोकते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो आप, इस यहाँ पर मैं पहरेदार हूँ, आप बाहर नहीं जा सकते। तो कहते मैं स्वयं बांके बिहारी हूँ। तो वो दंडवत प्रणाम करते हैं, तो कहते महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं। तो कह रहे हैं मैं रास नृत्य खेलने जा रहा हूँ, मेरा रास नृत्य का समय हो गया है, तो हम भी आपकी सेवा में, आप ले चलिए हमको। तो चलो उनको ले जाते हैं बंसी भट्ट के पास, रास मंडल के पास, और कहते हैं यहाँ खड़े रहो, रक्षा करो दरवाजे की, हम आते हैं रासलीला खेलकर। तो रात भर भगवान रासलीला करते हैं, और जैसे राजा निकलता ना सुबह सुबह, वैसे भगवान राज सुबह सुबह वापस आते हैं। तो फिर ही खड़ा है उधर द्वारपाल सेवक के रूप में, बोला चलो, तो उनके संग संग चलकर वापस मंदिर में आ जाते हैं, और वो ताले वाले बंद दरवाजे में चले जाते हैं अंदर। जाने के पहले वो वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, वो कांप रहा है ठंडी से, तो अपनी शाल उतारते हैं उस पर डाल देते हैं ठंड के लिए, और बिना शाल के वो अंदर जाते हैं। जैसे अंदर जाते हैं, शाल पड़ के बुड्ढा खड़ा है, तो वो पुजारी आते हैं सुबह मंदिर खोलने के लिए, ताला खोलते हैं, देखते हैं बुड्ढा कांप रहा है, खड़ा है उधर ही, असल में पागल है व्यक्ति है ये, हाँ रात को सोया भी नहीं है, क्या जरूरत थी खड़े रहने की। चले जाते हैं अंदर, अंदर जाके देखते हैं जब भगवान को जगाते हैं, तो भगवान के जो शॉल रात को रखा था वो गायब है। तो बड़ा ढूंढते हैं सब जगह पे, और वो क्या करता है, जब वो ताला खोल रहे हैं ना, तभी उनको रोकता है, बोलता है ताला मत खोलो, अब ये भी अंदर गए। तो बोलते हैं पक्का पागल हो गया है अभी, पक्का एकदम, कल तक तो लगा था थोड़ा पागल है, आज रात को पूरा पागल हो गया। तो बोले मत खोलना मत खोलना, तो खोलने को नहीं दे रहे उसको, लेकिन ये तो पुजारी है, वो तो अधिकारी है, तो बिल्कुल धक्का मार के उसको खोल के अंदर चले जाते हैं। और फिर जब देखते हैं शाल गायब है, सब मंदिर में ढूंढते कहीं नहीं मिलती है, तो बाहर आके वो देखते हैं, तो इसके ऊपर शॉल है वो, बोले शॉल कैसे आ गई तुम्हारे ऊपर, अरे मैंने कहा ना आपको ठाकुर जी अभी अभी वापस आए हैं, वो शॉल देके गए मुझे, आप विश्वास नहीं कर रहे थे। तब उनको विश्वास हुआ कि ये पागल नहीं है, ये साक्षात्कार करने वाला आदमी है, ये भगवान का दर्शन कर चुका है। वो सब वर्णन करते कि मैं गया उनके साथ रास मंडल में, वहां नृत्य करके वो रात को लौट के आए, तब मैं ठंड से कांप रहा था, तो उन्होंने अपनी शॉल निकाल कर मुझ पर डाली और फिर अंदर चले गए। वो मैंने बताया आपको, आपने यकीन नहीं किया, देखो ये शॉल भगवान की है कि नहीं। उस दिन से बांके बिहारी की मंगल आरती 9:30 बजे होती सुबह। सबसे 4 बजे होती थी पहले, उसके बाद में इस भाव से उनकी मंगल आरती 9:30 को होती है गर्मी के दिन में, और सर्दी में 10 बजे होती है, और रात को सबसे रात लयित मंदिर बंद होता है बांके बिहारी जी का। बांके बिहारी जी और एक लीला है, बांके बिहारी के साथ में ऐसे कई किस्से हुए हैं पहले, जो कोई भक्त आया प्रेम से और उनको देखते रह गया तो उसके साथ चले जाते थे वो, कोई भक्त ने आंख मिलाया नजर मिला दिया हाँ, और पर्दा बंद हो गया भोग लगाने के लिए, पर्दा खोलेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे अंदर आपको, और कई बार ऐसे बाहर मिले हैं लोगों को, बहुत पुरानी बात है ये, किसी भक्त से बात कर रहे हैं आराम से मंदिर के बाहर बैठकर, तो उन्होंने फिर पर्दा चालू करना शुरू कर दिया, मतलब कोई नजर का मिलाना मिलन होने के पहले ही नजर काट देना है, ज्यादा नजर में मिलन हो गया तो भगवान उसके हो जाएंगे, तुरंत चले जाएंगे मंदिर छोड़ के, इसलिए बार बार आपकी नजर उसके साथ मिलने के पहले ही, नजरों का मिलन होने के पहले ही काट देते हैं उसको। अभी अभी की भी कहानी है, एक दिन बांके बिहारी बहुत साक्षात का बहुत चमत्कारी ठाकुर है, ये कथा ज्यादा लंबी नहीं है, 50 साल पहले की कथा है। एक दिन रात को दूध और मिठाई रखने के लिए शयन में पुजारी भूल गए, वो वैसे ही मंदिर बंद करके सब चले गए, तो वहां पर आप जानते हैं ना बांके बिहारी के मंदिर के बाहर बहुत दुकान है ऐसे मिठाइयों के, वो कुछ मिठाई अपने हाथ से खुरचन वगैरह अपने हाथ से बनाते हैं, कुछ वैसे रखते रेडीमेड वगैरह, तो वो चलते रहता है। तो वहां पर एक बहुत वृद्ध व्यापारी था जो बहुत भक्त था बांके बिहारी का, तो वो देर रात तक वो अपना कुछ काम कर रहा था, सब दुकान बंद हो गए अपने अपने बंद करके चले गए, सब कुछ खाली हो गया, वो अकेला कुछ कर रहा था, तो एक सुंदर बालक आया वहां पर, मैं बाबा बड़ी भूख लग रही है कुछ खिला दो, तो वो उसको दूध पिला देते हैं और कुछ मिठाई खिला देते हैं, तो बहुत भूख लग रही है, तो उसने कहा मूल्य क्या है, तो वो अपना एक कंगन निकाल कर उसको दे देते, चला जाता है। अगले दिन जब पुजारी सुबह आते हैं तो देखते हैं भगवान के हाथ का बांके बिहारी का कंगन ही गायब, सब जगह ढूंढते हैं सब जगह ढूंढते हैं, फिर मंदिर के बाहर ढूंढने लगते हैं, सब जगह पूछने लगते हैं, तो वो बुड्ढे के दुकान में आते हैं और पूछते हैं कि आपके पास कोई कंगन है क्या, है ना, कैसे आपको मिला, आपने चोरी किया, उसको अरेस्ट करो, ऐसे बोलते हैं। तो कहते हैं कि कल रात को वो बालक आया था यहाँ पर, बहुत भूखा और प्यासा था, मैंने उसको दूध और मिठाई खिलाया, तो मूल्य मांगा तो उसने अपना कंगन निकाल के दे दिया, तब उनको ध्यान में आया कि हम लोग रात को कल दूध और मिठाई रखना भूल गए थे उनको, और कंगन दे दिया, उन्होंने ठाकुर जी का कंगन है, उनको ध्यान में नहीं आया, भगवान ने लीला किया उनके साथ में, उनके प्रेम को प्रतिसाद दिया। ऐसे बांके बिहारी की कई अद्भुत कहानियां हैं, कैसे भगवान बांके बिहारी अपने भक्तों से संबंध करते हैं। तो बांके बिहारी को ब्रज का राजा कहते हैं, सबसे अधिक भीड़ उनके मंदिर में होती है, बहुत सुंदर सुंदर उत्सव होते हैं उनके मंदिर में, सबसे अधिक भीड़ उनके मंदिर में होती है पूरे ब्रज के अंदर। और दूसरा उसके बाजू में एक मंदिर है, उसका नाम है राधा वल्लभ जी का मंदिर, कितने लोग वहां पर गए राधा वल्लभ जी मंदिर में, उसकी भी बड़ी अद्भुत कहानी है, सब लोग ध्यान से सुनिए। एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था वृंदावन में, वो बड़ा ही पवित्र ब्राह्मण था और शिवजी का भक्त था वो, और शिवजी हो या देवी हो या गणेश जी हो, सब लोग कुछ कुछ कामना मन में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, कोई उनका निरपेक्ष भक्त नहीं होता है, सब लोग कुछ लिस्ट लेके जाते हैं अपना एप्लीकेशन और खड़े रहते हैं, हर मंगलवार को नया एप्लीकेशन रहता है उनका, हर सोमवार को नया एप्लीकेशन, हर शुक्रवार को नया एप्लीकेशन रहता है, सब जगह जाकर अपना निवेदन दे देते हैं। तो लेकिन ये ऐसा नहीं था, ये शिवजी के ऊपर निरपेक्ष भक्ति करता था, कोई अपेक्षा नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई ये करूंगा तो कुछ प्राप्त होगा, ऐसे कुछ भी नहीं है, शिवजी पर प्रेम था उसका बहुत, तो शिवजी बड़े प्रसन्न हो गए उसकी निरपेक्ष भक्ति के ऊपर। तो एक दिन शिवजी प्रसन्न होकर उसके स्वप्न में आए और कहा कि आत्मदेव मैं बड़ा प्रसन्न हूं आपसे, आपकी भक्ति देखकर बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो मुझसे कुछ मांगो, मैं आपको देना चाहता हूं। तो आत्मदेव कहते नहीं भगवान, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, ना कुछ चाह के मैंने आपका पूजन किया है, मैं आपको पूजन करने में संतुष्ट हूं, पर आज आपने दर्शन दिया है मैं अति संतुष्ट हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो शिव जी कहते नहीं नहीं हमारा दर्शन खाली जाता नहीं कभी, हम देवता जब आते हैं तो कुछ ना कुछ दे जाते हैं, और देना ही पड़ता है, हमको देना ही है। तो इनको ध्यान में आता है कि मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं, लेकिन लग रहा है कि मैं कुछ मांगूंगा तो इनको खुशी होगी, उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए फिर वो कुछ इच्छा न होते हुए मांगते हैं, लेकिन सोचकर मांगते हैं। वो कहते हैं कि आपको जो सबसे प्रिय है वो मुझे दे देना। तो शिवजी नृत्य करने लगते हैं आनंद से, अरे ऐसा कोई भक्त नहीं मिला जो आज तक मेरे प्रिय वस्तु को मांगता हो, मेरे पास जो है वो मांगते रहते, ये दो वो दो, पैसा दो, बीवी दो अच्छी, हाँ, लेकिन मुझे जो प्रिय है और जो मैं चाहता हूं कि आप करो वो किसी ने मांगा नहीं आज तक। इस भक्त ने मांगा तो बड़े नाचते आनंद से। वो कहते आत्मदेव तुम्हारा जो कुआं है घर का खुद का, पुराने जमाने में ना, आज भी है बहुत सारे कुएं बड़े गांव में, सीढ़ियां होती है अंदर उतरने के लिए, पता है आपको, बहुत अंदर तक होती है, कुछ टनल भी होते हैं, जल के प्रवाह भी होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कुएं होते हैं, ऐसे बड़े बिल्डिंग की तरह होते कभी बड़े बड़े कुएं। तो कहते हैं कि आपके कुएं में जो सीढ़ियां हैं उसमें उतरो आप, और दाहिने हाथ में आपको एक टनल मिलेगा, सुरंग मिलेगा, उसके सुरंग के अंत में आपको मेरी सबसे प्रिय वस्तु मिलेगी। तो वो रात में उठ जाता है, बीच रात में वो स्नान करके कुएं में उतरता है, और उतर के वो जो बताया गया उससे उसको दृष्टांत देते हैं भगवान स्वप्न में, उसी सुरंग में घुस जाता है, और सुरंग के अंत में एक प्रकाश भरा दृश्य नजर आता है उसको। तो अंदर प्रवेश कर देखता है तो राधा वल्लभ जी की मूर्ति मिलती है उनको, जो शिव जी के आराध्य हैं। वो कहते हैं वो मेरी प्रिय वस्तु है, उसका पूजन करना। तो राधा वल्लभ जी का विग्रह है उस कुएं से निकालकर वो अपने घर में पूजन करता है उनका। उस दिन से फिर शिव जी का पूजन भी करता है, लेकिन राधा वल्लभ जी के शिव जी के आदेश से उनका पूजन शुरू करता है, बहुत समय तक पूजा करता है। उतने बीच में भगवान के बंसी के अवतार जन्म लेते हैं, भगवान की बंसी अवतरित होती है ओरछा नाम के मध्य प्रदेश के प्रदेश में, और वहां पर उनका नाम है हरि वंश, मतलब क्या हरि की बंसी, ऐसे नाम से उनका जन्म होता है वहां पर। यथावकाश जवान हो जाते हैं और उनको उनके विवाह होते हैं, और उस बंसी के अवतार हरि वंश जी को भगवान स्वप्न देते हैं कि आप जाइए वृंदावन में और आपका आत्मदेव नाम के ब्राह्मण से मुलाकात होगी, वो आपको उसकी कन्या और मुझे दान में देगा, उसकी कन्या के साथ शादी करना और मुझे भी स्वीकार कर लेना। तो भगवान की इच्छा के अनुसार वो वृंदावन की ओर चलने लगते हैं। वो गृहस्थी थे वैसे, तो बड़े संत थे वो, और वो चले आते हैं वृंदावन में, और बीच में इनको भी स्वप्न देते हैं आत्मदेव को। वो कहते हैं मेरे बंसी के अवतार मध्य प्रदेश से आने वाले हैं, तो जब आएंगे तो आपसे मिलेंगे, जब आपको मिलेंगे तो आपको अनुभूति होंगे कि यही व्यक्ति है, ऐसे आपको अंदर से प्रेरणा होगी, उस समय मुझे मेरे विग्रह को और आपकी कन्या को उसमें आप अर्पण कर लेना। यथावकाश हरिवंश वृंदावन में आते हैं और आत्मदेव की उनकी मुलाकात होती है। जैसे दो महान आत्मा मिलते हैं तो अंदर से प्रेरणा होती है कि यही व्यक्ति है जिसको हमको मिलना है, दोनों को ये पहचान होती है, और दोनों गले मिलते हैं और एक दूसरे को आंसुओं से नहलाते हैं, प्रेम के अश्रुओं से, वह देर तक आलिंगन में रहते हैं। फिर बड़े भारी हृदय से वो राधा विग्रह के हृदय विग्रह को, राधा विग्रह के राधा वल्लभ जी के विग्रह को और अपनी कन्या को लेकर इनको अर्पण कर देते हैं विवाह में। तो इनका विवाह होता है और फिर अपनी पत्नी को वो फिर अपने घर भेज देते हैं मध्य प्रदेश में, और राधा वल्लभ जी का विग्रह को लेकर एक वन में रहने लगते हैं। आज भी वो वन, आप भक्ति वेदांत हॉस्पिस में आए कभी, कितने लोग आए हैं भक्ति विधान हॉस्पिस से, ये जगह 2 मिनट के अंतर पर है जहां पर राधा वल्लभ जी के विग्रह को लेकर हरिवंश जी महाराज रुके थे। उस जमाने में ऐसे पेड़ हुआ करते थे कि पेड़ के अंदर ऐसे ओपन जगह हुआ करती थी, इसमें लोग साधु लोग रहा करते थे, स्टे देयर परफॉर्म भजन, उसको मराठी में कहते हैं ढोली, ढोली झाड़ के अंदर ढोली होती है, उसके अंदर जगह होती है। तो ऐसा एक पेड़ था उस वन में जो गजमुना किनारे था, तो रास मंडल का एक हिस्सा भी है, वहां पर ऐसा एक पेड़ था जिसमें 3 ढोलियां थी 3 स्तर पे। तो एक स्तर पे ढोली थी, उसके अंदर ये बैठ के भजन करते थे, एक स्तर का जो ढोली था उसके अंदर ये राधा वल्लभ जी को रखे थे, और तीसरे स्तर में सब पोशाक वस्त्र अलंकार रखे थे, जैसे कि वो ट्रिप्लेक्स फ्लैट था उनका, एक में रहते थे, एक में भगवान, एक में उनके स्टोर हाउस था। ऐसे उन्होंने वहां रहकर बहुत दिन तक भजन किया, राधा वल्लभ जी का सेवा किया, और इनके ब्रज में आने के वजह से जहां वो रह रहे थे उसके आसपास में सारे प्राणी द्वेष रहित हो गए, जितने भी जीव थे वो सब एक दूसरे के मित्र बन गए, हाथी गले मिल रहे हैं शेर से, शेर सिंह जो है वो बकरी से गले मिल रहा है, हिरण से गले मिल रहे हैं, सब लोग प्रेम से रह रहे हैं, कोई किसकी हिंसा नहीं कर रहा है। ऐसा दिव्य प्रभाव हरिवंश महाराज के वहां पे होने से प्रकट हो जाता है, सब जगह उनकी ख्याति फैल जाती है। तो उस समय वृंदावन में एक डाकू था, उसका नाम था नरवाहन। तो नरवाहन कुप्रसिद्ध था, मतलब इल फेमस, इतना भयंकर डाकू था वो। उसका बड़ा समाज था डाकुओं का, लेकिन सबका एक स्टाइल था, सब लोग अकेले जाकर लोगों को लूटते थे, इतने वीर थे वो, अकेले जाकर अनेक लोगों को एक साथ लूटते थे, अपने अकेले हाथ से तलवार लेकर जाते थे। और जब लूटते थे तो वो लूटे हुए व्यक्ति को सब लूटकर कपड़ा उतार कर पेड़ पर उल्टा टांगते थे और चले जाते थे, उनका एक स्टाइल था, मोडस ऑपरेंडी। तो वो नरवाहन पूरा ब्रज में हाहाकार मचा दिया था उसने, सब लोग डरते थे उससे, उसके नाम से कांपते थे। तो उसके कान पर इस महाराज की ख्याति आती है कि एक महाराज जो आए हैं वो इतने पावरफुल हैं कि इनके प्रभाव से सारे खूंखार जानवर भी गले मिलते हैं और सब जगह शांति आनंद और सुकून फैला हुआ है। तो उसको तिलमिला उठता है, वो उसको लगता है कि ऐसे मेरे मुझसे अधिक प्रसिद्ध कौन हो सकता है, मैं खत्म कर दूंगा उसको। ऐसे करके घोड़ा लेकर तलवार लेकर राज वस्त्र पहनकर, डाकू का राजा है ना वो, पूरा भरजरी वस्त्र पहनकर मुकुट पहनकर तलवार धारण करके शस्त्र धारण करके घोड़े पर बैठ के चलता है वृंदावन की ओर। देखता हूं कौन है वो साधु, उसको आज ही खत्म कर दूंगा। ऐसे पहुंचते हैं, लेकिन जब निकलते हैं ना तो उसको लगता है अरे एक साधु को मारने के लिए तलवार घोड़ा क्या जरूरत है, घोड़ा छोड़ देता है, तलवार फेंक देता है और पैदल चलने लगता है। तो यमुना जी के रेत पर चल रहा है तो उसके वो खड़ाऊ के क्या कहते हैं उसको, मोजरी के अंदर सब रेती आने लगती है। तो क्रोध है ना उसके मन में, बहुत द्वेष और क्रोध, तो ऐसे फेंक देता है पूरा ऊपर निकाल के और नंगे पैर चलने लगता है। बहुत देर चलने के बाद उसको गर्मी लगती है बहुत, तो मुकुट उतार के फेंक देता है, वस्त्र उतार के फेंक देता है, लेकिन क्रोध छाया हुआ है मन में। तो ऐसे रेप फ्राइड करके चल रहा है, कि वस्त्र उतार के फेंका, सलवार निकाल के फेंक दिया। और जब तक इनके जगह पर पहुंचा ना तो केवल कोपिन बचा है खाली, पर उसको ध्यान नहीं है कि क्या हो रहा है और ये सब क्यों हो रहा है। साधु के अस्तित्व का प्रभाव है ये, सारा ऐश्वर्य जो है वो निकालते और ढूंढ त्याग करते करते पहुंच गया उधर। जब तक वहां पहुंचा मन से भावना से राक्षस है वो, मतलब एकदम खुखार डाकू है, लेकिन शरीर से पूरा फकीर बन गया वो और वहां पहुंच गया, फिर भी आंखों में द्वेष और क्रोध है उसके, घूर घूर को देख रहा है, कौन है हरिवंश, तुम ही हो। तो हरिवंश जी महाराज कहते हैं अरे मुझे क्यों देख रहे हो इतना घूर घूर के, ठाकुर को देखो, नरवाहन प्रभु निहार, मुझे क्यों देख रहे हो, प्रभु को निहारो। तो उतने क्रोध से वो प्रभु को निहारते हैं, जैसे ही वो राधा वल्लभ को देखते हैं ना, सारा क्रोध द्वेष सब पिघल जाता है उसका पूरा। तत्क्षण जैसे दर्शन करता है राधा वल्लभ जी का, वहीं पर वो नतमस्तक हो जाता है, इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अभी बाहर का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया उसका, आते आते ही हो गया, जैसे भगवान का और हरिवंश का दर्शन किया, अंतर बाह्य परिवर्तन हो गया उसका, वहीं पर चरणों में गिर गया रेत में। वो कहने लगा महाराज मैं आपका वध करने आया था, लेकिन आपके दर्शन से मेरे हृदय परिवर्तन होकर मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मुझे कृपा करके शिष्य बनकर स्वीकार कीजिए शिष्य बनाकर। तो वहीं पर हरिवंश जी उसको अनुग्रह देते हैं और शिष्य बना लेते हैं, और वो वहीं रहता है, आया था राज दरबार से और लौट के जाता ही नहीं है। तो वहां के जितने सरदार थे उनके, उनको लगता है कि राजा जंगल में गया, कोई शेर से युद्ध हुआ, शेर खा गया होगा उनको, लौट के नहीं आए। तो कोई योग्य सरदार को राजा बना देते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। यहां पर ये महाराज की सन्निधि में रहकर बड़ा संत बनता है और रात रात ब्रज में पूरा नाम भगवान का पुकारते हुए विचरण करता है, ये देखने के लिए कोई संकट में तो नहीं है, कोई पीड़ा में नहीं है, कोई कष्ट में, सबका सहायता करता है, ऐसा भक्त बनता है, विरक्त भक्त, कोपिन पहनकर रहता है और अपने गुरु की तरह विरक्त होकर भगवान का भजन करता है। और वो जो डाकू थे वो राजा बनाकर अपना काम शुरू चालू रखते हैं अपना। तो एक दिन उनका एक सरदार ब्रज में आता है और एक बड़े व्यापारी साहूकार को लूटता है और उसको निर्वस्त्र करके, धन लूट कर उसको पेड़ पे उल्टा टांग के चला जाता है, और वो बेचारा टंगा हुआ उल्टा पुकार रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, तो एक बुढ़िया वहां से आती है, वो कहती है आप बचाओ बचाओ मत बोलो, नरवाहन नरवाहन बोलो, क्योंकि नरवान आएगा और आपको बचाएगा, वो सबको बचाता है। तो वो बचाओ बदले में नरवाहन पुकारता है, नरवान उस आवाज की ओर पहुंच जाता है, वो देखता है ये तो हमारे लोगों का काम है, ये हमारी स्टाइल है, तो उसको उतारता है और सीधे अपने पुराने राज्य में लेके जाता है जहां पर उसका दरबार हुआ करता था। नरवान को देखो सब चौक चौक जाते हैं, अरे हमको लगा तो आप गुजर गए, लेकिन आप है, मैंने बिल्कुल हूं मैं, ये जो व्यक्ति है इसका सारा लूटमार का धन जो है वापस कर दो, उसको नए वस्त्र पहनाओ, उसको अच्छे खड़ाऊ पहनाओ, इसको पालकी में बिठा के घर में पहुंचा के आओ। तो राजा के डर से वो भी तो था तो नरवान ना, वो भले भक्त बन गया लेकिन उसके अंदर शक्ति थी अभी भी, तो उसके डर के मारे सब लोग सरदार प्रणाम करते हैं और वो लूटे हुए आदमी को पूरा सब वापस देते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, अलंकार पहनाते हैं, मुकुट पहनाते हैं और पालकी में बिठा के घर पहुंचा के आते। ऐसा नरवान था, यथावकाश नरवान बहुत ही दीन संत बनता है और हरिवंश को कहता है कि महाराज मैंने ये सारा जो वृंदावन का जमीन है ना पूरा मैंने हड़प लिया है अपने बल से, ये सब मेरी जमीन है, मैं इसका मालिक हूं, मैं आज ये सारा आपको समर्पित करना चाहता हूं, मैं ऐसा धनुष बाण लेकर बाण चलाऊंगा, मेरा बाण जहां तक पहुंचेगा वो तो सारी भूमि में आपको दान कर देता हूं। तो उसने बाण चलाया तो बाण पूरा वृंदावन को व्याप्त करके जमुना पार चला गया और जमुना पार में एक स्थान है उसका नाम है मान सरोवर। आप में से कितने लोग वहां पर गए मानसरोवर? आपको सबको ब्रज में जाना चाहिए और ब्रज के दर्शन करना चाहिए, ऐसे अद्भुत अद्भुत स्थान है वहां पर। तो मानसरोवर वो स्थान है जहां पर एक बार रास नृत्य में जब राधा रानी लेट कृष्ण भगवान लेट पहुंचे, राधा रानी पहले पहुंच गई और कृष्ण ने लेट किया तो राधा रानी गुस्सा हो गई और वो जमुना पार करके वहां जाके बैठी और रोई। उनके अश्रुओं से बना हुआ कुंड है वो मानसरोवर, उष्ण अश्रु वहां भये उनके, और वही जगह है वहां पर जब रास मंडल पे भाग लेने के लिए जब शिवजी महाराज आए थे तो उनको सखियों ने रोका था कि आप नहीं जा सकते। क्यों? रास मंडल में केवल स्त्रियां प्रवेश कर सकती है, एक ही पुरुष है श्री कृष्ण, बाकी सारी स्त्रियां हैं, और किसी को जाना है श्री कृष्ण को छोड़कर पुरुष को तो उसको भी स्त्री बनना पड़ेगा। तो शिवजी महाराज कहते हैं अरे तुरंत तैयार है हम, कैसे बनना है बताओ, उनको कोई संकोच नहीं है, पार्वती क्या बोलेगी, घर वाले क्या बोलेंगे, कैसा होगा मेरा स्थिति उसके बाद में, कोई मन में संकोच नहीं है, इतनी भगवान के लिए आतुरता है कि मुझे बताना कैसे आपको स्त्री बनना है। तो ललिता जी कहती है कि आप जाओ और जमुना किनारे पल्ले पार वहां पर मानसरोवर है उसमें स्नान करो, आप गोपी शरीर प्राप्त करोगे। तो वो छलांग लगा के भाग के गए, वो बिना आओ ना दिखा ताओ सीधे भाग के गए, डुबकी लगाई तो तुरंत शिव जी जो है वो गोपी बन गए और वैसे ही गिले भाग के आए वापस, आतुर थे ना बहुत, तो जब आतुर होके भाग के आए सभी ललिता विशाखा थकिया हंसने लगे जोर जोर से। क्या हंसने की बात क्या है उसमें, आप बताइए हंसने की बात क्या है, आपने कहा जाओ स्नान करो गोपी बनो, गोपी बनकर आ गए, अभी हंसना का क्या उसके अंदर। इसलिए हंस रहे हैं कि वो तो स्वयं गोपी बन गए लेकिन जो सांप लटके हुए थे उनके ऊपर वो गोपी नहीं बने, वो तो भाव था ना उनका गोपी बनने का इसलिए वो गोपी बन गए, लेकिन सांप तो गोपी बनने नहीं गए थे, उनके ऊपर बैठ के चले गए तो वैसे ही बैठ के वापस आए। तो एक सुंदर कन्या वो सुंदर गोपी है उसके ऊपर सर पे सांप, हाथ में सांप, गले में सांप, तो कैसे दिखेगी वो। तो ये देखकर वो हंसे, कैसे हंसे, इन एप्रिसिएशन सराहना के भाव से कि देखो परवाह भी नहीं उनको क्या हो रहा है लेकिन भगवान की सेवा करने कितने आतुर हैं। तो वो जगह है मानसरोवर, इसमें शिवजी ने स्नान किया था और गोपी शरीर प्राप्त किया था, उस शरीर में फिर उनका आतुरता भाव उत्सुक भाव देखकर ललिता विशाखा ने अपने हाथ से उनका श्रृंगार किया है और सुंदर गोपी बनाकर उनको रास मंडल के अंदर लेके गए, वहां पर उनको हाथ चामर दिया हाथ में और जुगल जोड़ी का सेवा किया उन्होंने राधा और कृष्ण का। रास मंडल के केंद्र स्थान में रत्न सिंहासन पर बिठाए हुए राधा श्याम सुंदर का उन्होंने सेवा किया बहुत देर तक। फिर रास शुरू होने का समय आया तो फिर सखियों ने मिलकर उनको वापस बाहर ले आए और कहा कि आप यहीं खड़े रहो और रास मंडल की रक्षा करो। फिर रास का आरंभ हुआ है तो वो मानसरोवर तक इसका बाण चला गया और सारा भूमि जो है मानसरोवर सब दान दे दिया अपने गुरु जी को। तो एक समय पर सारा जमीन वृंदावन का जो हित हरिवंश के स्वामित्व का था तो धीरे धीरे उन्होंने सब अपने शिष्यों को वो बांट दिया। तो आज भी आप बाणसारों जाएंगे ना तो राधा वल्लभ जी संप्रदाय के आचार्यों की सेवा वहां पर है, उसका इतिहास यह है, क्योंकि वो बाण वहां तक पहुंच गया था तो वो नित हरिवंश के सेवा में वो हिस्सा भी आ गया था। फिर एक हिस्सा उन्होंने हरिराम व्यास जी को दिया, वो उनके शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य थे उनके, वो सबको सेवा बांट दिया उन्होंने। और फिर उसके बाद में जो विग्रह है राधा वल्लभ जी का, वो आज जहां पर मंदिर है उसके पहले एक मंदिर है, वो नया मंदिर बनाया गया और वहां पर उनका सेवा किया गया। फिर एक समय पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो राधा वल्लभ जी का विग्रह लेकर काम्यवन में गए, और काम्यवन में और एक राधा वल्लभ जी का मंदिर है, यहाँ पर कई दिन तक, कई महीनों तक उनकी सेवा की गई। तो मुसलमानों का आतंक समाप्त हो गया तो उनको वापस लेके आए, तो उनके द्वारा भ्रष्ट किए मंदिर में फिर उनका स्थापना नहीं किया गया, एक नया मंदिर बनाया गया जिसमें आज राधा वल्लभ जी विराजमान। जैसे राधा वल्लभ जी जो है वो बांके बिहारी जैसे सिंगल है, उनके शरीर के अंदर ही राधा रानी है, और बालों की एक चोटी बनाते हैं वो राधा रानी का प्रतीक है। बांके बिहारी के शरीर के अंदर राधा रानी है और राधा वल्लभ जी के अंदर भी राधा रानी है, लेकिन एक प्रतीकात्मक उसका एक स्वरूप बाहर रखते हैं, चंद्रिका वाला मुकुट पहनाकर राधा रानी के प्रतिनिधि के रूप में एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है वहां पर। तो ये राधा वल्लभ जी के जो आचार्य हैं राधेश लाल जी महाराज, इनके मंदिर हमारे राधानाथ महाराज जी गए थे मंगला में, और इन्होंने ही बताया था पैर में आपके कटा हुआ है, और वो 14 इंजेक्शन देने का सजेशन दिया था। तो ये उनके तभी दोनों छोटे उम्र के थे, राधानाथ जी महाराज 19 साल के थे और ये 21 साल के थे, तब से उनकी बहुत गहरी मैत्री है। ये राधा वल्लभ जी के गोस्वामी महाराज और हमारे गुरुदेव मानसरोवर जाकर रात रात भर बातें किया करते थे। कौन सी भाषा में करते थे बातें मालूम है आपको? इनको इंग्लिश नहीं आती थी राधेश लाल जी महाराज को, और हमारे गुरुदेव को हिंदी नहीं आती थी, फिर भी रात रात बातें करते थे, हंस हंस के हुए बड़ी बड़ी बातें करते थे। और अभी जब हम बीच में आए उनके तो हम अनुवाद करने लगे ना, इनकी इंग्लिश का इनको हिंदी बताते थे, इनकी हिंदी का उनको इंग्लिश बताते थे, और सब सुनते थे और हम लोग करते रहते थे। और उसके एंड में कहते हैं लेकिन फिर भी उसमें ज्यादा आनंद आता था जब आप नहीं थे बीच में, क्योंकि तब हृदय से हृदय की बात होती थी, अभी हृदय की दिमाग से घूमकर आंख कान में आती है, तो लंबी यात्रा करके आती है ना, इसलिए ज्यादा आनंद नहीं आता उसमें। अजीब बात है ना ये, एक विदेशी व्यक्ति और एक देशी ब्रजवासी रात भर बातें कर रहे हैं, 10 मिनट की बातें नहीं कर रहे, रात भर बातें कर रहे हैं। कभी अपने घर के उधर एक नल है उस मंदिर के बाहर, वहां भी अभी भी लोग कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, उधर भी ये बैठकर रात भर बातें करते थे। और राधा वल्लभ जी का संप्रदाय जो है ना वो गृहस्थ संप्रदाय है, उसमें विवाह करते हैं और विवाह होने का जो पहला पुत्र होता है उसको युवराज कहते हैं, वो ही आगे जाकर आचार्य बनता है। तो परंपरा ही गृहस्थी परंपरा है, तो ये गृहस्थी परंपरा वाले आचार्य और हमारे गुरुदेव ब्रह्मचारी और रात भर बातें कर रहे हैं। तो उनकी माता जी तो थी ना राधा वल्लभ जी जो गोस्वामी है राधेश लाल जी महाराज, उनकी माता जी जो है वो डांटती थी हमारे गुरुदेव को, ज्यादा संग मत देना इसको तो विरक्त बन जाएगा, फिर आगे कौन चलाएगा गद्दी इसकी, तो प्रेम से डांटते थे। और कई बार भोजन भी करते थे, हमने भी उनके घर में कई बार भोजन किया है प्रेम से, आप लोगों को लेकर गए थे उनके घर पे, तो याद नहीं होगा शायद। तो ऐसा सुंदर ब्रज का माहौल है। श्री राधा वल्लभ लाल की, राधा वल्लभ लाल का एक बहुत विशेषता है, राधा वल्लभ लाल जी बार बार शादी करते हैं, उस उत्सव को कहते हैं ब्याहुला। वो जब भी उनका मन करता है राधा रानी से फिर वो शादी कर लेते हैं। आप भी जा सकते हैं और आपकी तरफ से स्पॉन्सर कर सकते हैं, उस दिन डेकोरेशन होगा, क्या सनई बजेगी और विवाह होगा, और दूल्हा बनेंगे, उन पर मालाएं चढ़ाई जाएगी, फिर उसको ऊपर करके माला पहनाएंगे, सब बहुत सुंदर उत्सव होता है। और उसका कोई तिथि नहीं है, साल में 50 बार भी शादी कर सकते ये उनकी विशेषता है। पूरे ब्रज के एक ही मंदिर के अंदर ब्याहुला होता है और बार बार होता है वो, अभी अधिक मास में भी ब्याहुला होता है उनका। और ब्रज के मंदिर के अंदर ऐसा एक सिचुएशन है कि अधिक मास के अंदर साल भर में जितनी भी तिथियां होती है ना उत्सव की, जैसे होली होती है और जन्माष्टमी होती है, राधाष्टमी होती है, फिर रास पूर्णिमा होती है, जितने भी साल भर में चंदन यात्रा होती है, वसंत पंचमी होती है, जितने भी उत्सव होते हैं वो एक महीने में सारे उत्सव मनाते हैं। अभी अभी होली का उत्सव का फोटो भी आए थे। अधिक मास का विशेष महत्व है उधर। ब्रज के सभी मंदिरों में मनोरथ के रूप में सारे साल के जितने प्रमुख उत्सव है वो एक महीने में सारे मंदिरों में मनाए जाते हैं। हो सकता है आज होली यहाँ पर है तो कल वहां जन्माष्टमी है, हो सकता है एक दिन में अलग अलग उत्सव, लेकिन सारे उत्सव अपने अपने सुविधा के अनुसार वहां मनाते हैं। ब्रज में आज की तारीख में इतना आनंद है, इतनी भीड़ है उधर, क्योंकि सब जगह विशेष दर्शन है। कहीं भगवान ऐसे पेन पकड़ के राधा रानी को खत लिख रहे हैं, ऐसा दर्शन है। कहीं पर कृष्ण भगवान सखी बनकर अपने सर पे मटका लेकर जा रही है, गोपी वेश धारण करके, राधा रानी भी गोपी बनी हुई है, वो भी गोपी बने हुए हैं, सर पे मटका लेकर जा रहे हैं। ऐसे अद्भुत दर्शन सब मंदिरों में होते हैं, अलग अलग मंदिरों में, और वो देखने के लिए लोग कर भागते रहते हैं, खाली यहाँ से वहां, उधर से यहाँ, उधर से वहां, दिन भर यही करते रहते हैं और भजन करते रहते हैं और दर्शन लेते रहते हैं। ब्रज में इतना आनंद है कि आपको ना पता चलेगा कि वातावरण में आनंद होने का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति आनंद में है, हर एक व्यक्ति उत्सव मूड में है, तो आप ऐसे प्रवेश करेंगे ना तो वो आनंद आपको भी ऐसा कवर कर लेगा, पूरा छा जाएगा आपके ऊपर। वो सब अनुभव करने की बातें, वर्णन करने की बातें नहीं, आपको जाकर वहां देखना पड़ेगा। कार्तिक महीने में जाएंगे, होली के समय जाएंगे, जन्माष्टमी के समय जाएंगे, झूलन के समय जाएंगे, भगवान झूला झूलते हैं सभी मंदिरों में, जो अंदर बैठे ठाकुर जी अंदर बैठे हुए हैं वो सब बाहर आते हैं, और चांदी के सोने के एक्चुअल चांदी और सोने के रत्नों से भरे हुए झूले में झूलते हैं। आज भी बांके बिहारी के पास में 50 किलो वजन का झूला है सोने का, और उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो फोल्ड करके रखते हैं उसको, और झूले यात्रा शुरू होती है हरियाली तीज के दिन, वो इस साल में अगस्त में आएगी। तो हरियाली तीज के बाद में पूर्णिमा तक झूला झूलते हैं भगवान, और दिन में अंदर रहते हैं, शाम को 4 बजे बाहर आते हैं, सबके आंखों के सामने ऐसे एकदम पास में आ जाते हैं और उनको झूला झुलाते हैं, बहुत सुंदर गीत गाते हैं, वाद्य बजाते हैं, भजन गाते हैं, सुंदर रागदारी में गायन करते हैं और भगवान को झूला झुलाते हैं। कोई राधा रानी झुलाती है, कभी कृष्ण को झुलाते हैं, कभी सखियों को झुलाते हैं, ऐसे अद्भुत आनंद ब्रज में है। सब जगह उत्सव उत्सव है। आज अगर कलयुग के प्रभाव से इतने साल होने के बाद भी इतना आनंद है तो उस समय कितना आनंद हुआ करता था, जिस समय यहाँ पर ठाकुर जी स्वयं गौरांग महाप्रभु थे और ठाकुर लीला करते थे उस समय, तो वो दिव्य भूमि आज भी आपके लिए उपस्थित है। ये सब कथा बताने का प्रयोजन क्या है कि आपके मन में कहीं ना कहीं ब्रज के लिए आकर्षण पैदा हो और आप वहाँ जाने के तरसे और वहाँ जाएं और उस भूमि में जहाँ पर कण कण को भगवान ने चाटा है उस भूमि पर आप दर्शन करेंगे, उस रज को अपने सिर पर लगाएंगे और जीवन को धन्य करेंगे। इसलिए एक एडवर्टाइज के रूप में आपने हमने ये प्रस्तुतिकरण दिया आपको, जस्ट टू अट्रैक्ट यू टू वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री राधा मदन मोहन जी की, श्री राधा गोविंद देव की, श्री राधा गोपीनाथ की, श्री राधा दामोदर की, श्री राधा रमण देव की, श्री राधा गोकुलानंद की। तो बज गए क्या, राधा मदन मोहन जी हो गए पहले सबसे। श्री वृंदावन धाम की, श्री कृष्ण बलराम की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम।